صفحہ نمبر 44، جب یہ جلوس مکور صاحب کی حدود میں داخل ہوا، چودھری صاحب کے 200 ملازم پھولوں کے ٹوکرے اٹھائے دور ردیہ کھڑے ہو گئے۔ جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزرتا، یہ لوگ گلاب، چمیلی اور گیندے کے پھول رات کے سامنے میں بچھاتے جاتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے رنگ برنگی جھنڈیاں لہراتے تھے اور گلی گلی میں باوردی، بینڈ، سکھوں کے مشہور ترانے بجا بجا کر سلامی دیتے تھے۔ راجہ بوب سنگھ نے پہلے سارے گرودواروں کی زیارت کی، پھر وہ بابا صاحب کے مزار پر حاضر ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے چوبارہ مٹکا صاحب جا کر اس تلسماتی مٹکے کو تعظیم کی جس کے پتھر میں سونا چاندی بڑی افراد سے پیدا ہوتا تھا۔ راجہ بھوپ سنگھ نے نیلے زرب کا سرپوش اٹھا کر مٹکے کے اندر للچائی ہوئی نظروں سے جھانکا، جو آج خاص طور پر سونے چاندی کے سکوں اور زیورات سے لبا لب بھرا ہوا تھا۔ چودھری مہتاب دین نے لپک کر مٹکا انڈیل دیا، اور راجہ بھوپ سنگھ کے قدموں میں یہ زرین انبار لگا کر بڑی لجاجت سے عرض کیا، حضور فقیر کا یہ حقیر نذرانہ قبول کریں۔ راجہ بھوپ سنگھ کے خاص مصحبوں نے یہ سارا انبار سمیٹ کر بڑے بڑے انوالوں میں باندھ لیا۔ راجہ صاحب نے اظہار خوشنودی کے لیے مٹکا صاحب کو دوبارہ تعظیم دی۔ انگریزی شراب کی بوتلیں راجہ صاحب کو خاص طور پر پسند آئیں۔ سر شام پڈوانہ کے میدان میں بڑے بڑے سوروں کی کھالیں اترنے لگیں، اور رات گئے جب جھمکا جان اور ترنجن بائی کے طائفے اپنے اپنے ساز و سامان سجا کر محفل میں جم گئے، تو یکا یک چمکور کے ہندو، مسلمان اور سکھ بڑے بوڑھے اپنے گھروں کی کنڈیاں چڑھا کر اندر دبک کر بیٹھ گئے۔ پچھلے 150 سال میں آج پہلی مرتبہ چمکور میں برسر عام سور کا گوشت کاٹا گیا تھا۔ آج تک اس قصبہ کی فضا جھنک جان کے طبلے کی تھاپ اور ترنجن بائی کے گھنگروں کی جھنکار سے ناشنا تھی۔ رات کے بڑھتے ہوئے سناٹے میں جب ان سازوں کی آواز فضا میں دور دور تک لہرائی تھی، تو گاؤں والوں کے دل دھک دھک کرنے لگے۔ خوش عقیدہ عورتیں جو ہر جمعرات کو بابا صاحب کے مزار پر دیا جلانے جاتی تھیں، سہم سہم کر کوٹھوں کی منڈیر سے دیکھتی بیٹھی تھیں۔ طوفان زدہ اندھیری راتوں میں ان ہی کوٹھوں پر چڑھ چڑھ کر ان مقدس چراغوں سے اپنی مرادیں مانا کرتی تھیں جو بابا صاحب کے فیض پڈوانہ کے میدان میں روشن ہوا کرتے تھے۔ آج اسی میدان میں رنگ و بو ایک سلاب سایا ہوا تھا۔ قندیلوں اور شموں کی زیادہ حد نظر جب مگا رہی تھی، لیکن شراب میں بدمست فوجیوں کی انکار کے ساتھ گاؤں والیوں کے دل لرزنے لگے تھے، جیسے کوئی زبردستی ان کی باہیں پکڑ کر کھینچ رہا ہو۔ بے زبان کنواریاں جو سپنوں کی برات لے کر بابا صاحب کے مزار پر کچے چاول اور شکر کی مٹھیاں بھر بھر کر نچھاور کیا کرتی تھیں، یوں پریشان اور حیران تھیں جیسے بھرے ہوئے چوراہے پر برس عام ان کا سہاگ لٹ رہا ہو۔ سارا گاؤں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح انجانی فضاؤں میں ڈگمگا رہا تھا۔ روایات کی ڈور ٹوٹ گئی تھی، اسباب کا پیچ کٹ گیا تھا، سکون کی دولت لٹ گئی تھی، تاریخ کے سانچے بے نور ہو گئے تھے، وقت کا پاسبان سو گیا تھا۔ صدیوں کے سکت کو فقط ایک رات کے شور نے نگل لیا تھا۔ دوسری صبح نور کے تڑکے جب راجہ بھوپ سنگھ اور اس کا لاؤ لشکر رخصت ہو کر چلا گیا، تو چمکور صاحب کی صورت یوں نکل آئی جیسے ہزاروں گھوڑوں نے کسی خوبصورت قبرستان کو پاؤں تلے رون ڈالا ہو۔ تھکے ہارے کرندے اور خادم جہاں جگہ ملی پڑھ کر سو گئے۔ اندر حویلی میں چودھری مہتاب دین بھی ایک تخت پوش پر لیٹے کروٹے بدل رہا تھا۔ ایک دو خاص مصاحب ان کا سر اور پاؤں دبا رہے تھے۔ کئی روز کے بے درپے ضبط جگہ نے انہیں چور کر دیا تھا۔ یوں بھی کل رات سے وہ کچھ زیادہ ہی کسل مند تھے۔ رقص و نغمہ کی محفل میں راجہ بھوپ سنگھ نے انہیں اکثر کئی بار شراب پینے کی دعوت دی تھی، لیکن چودھری صاحب ہر بار خوش سلیقہ ہیلوں بہانوں سے ٹالتے گئے۔ انجام کر جب راجہ صاحب خود لڑکتاتے ہوئے اٹھے اور شراب کا جام بنف سے نفیس ان کے ہونٹوں سے لگا کر کھڑے ہو گئے، تو چودھری مہتاب جن کی مروت انکار کے تاب نہ لا سکے، دوسرا جام انہوں نے جھمکا جان کے ہاتھوں سے پیا، تیسرا نرنجن بائی سے۔ اولین بادہ گسگاری کے اس دور نے چودھری مہتاب جن کے دل و دماغ میں ایسے ایسے رنگین کم کم کے روشن کر دیے جن کی تجلیوں سے وہ آج تک روشن نہ ہوئے تھے۔ حویلی کے در و دیوار ایک خوبصورت غبارے میں ڈوب گئے۔ جھمکا جان کے گلے سے آواز کی جگہ مہتابیاں سی پھوٹنے لگی۔ ترنجن بھائی کے تھرکتے ہوئے تن بدن میں سونے اور چاندی کی تار لہلانے لگے۔ رنگ و نور کے اس سلاب میں چودھری مہتاب دین غبارے کی طرح اڑ رہے تھے، لیکن جب صبح ہوئی تو ٹوٹا ہوا کمار چودھری صاحب کے رگو و پے میں تیسے مارنے لگا۔ وہ اپنے تخت پوش کا عمدے پڑے ہوئے کرہا رہے تھے۔ اس عالم میں سردار نونہال سنگھ نے انہیں ایک مسدہ جان فضا سنایا۔ سردار نونہال سنگھ چوبارہ مٹکا صاحب کی سیوا پر مامور تھے، اور اس روحانی کاروبار میں چودھری مہتاب دین کے دست راست تھے۔ चौधरी ननिहाल सिंह ने चौधरी साहब का हाथ पकड़ कर कहा, चौधरी उठो, इस तरह हमला औरत की तरह पड़े पड़े कब तक रहते रहोगे। चौधरी साहब अपना दुखता हुआ बदन संभाल कर सख्त पोश पर अकड़ू बैठ गए। चौधरी हीरा हीरे को काटता है, सरदार ननिहाल सिंह ने कहा, शराब का कसल भी शराब ही से जाएगा। सरदार ननिहाल सिंह के इसरार पर चौधरी मताब जी ने शराब के एक दो घूंट पिए तो इनके कसीले मुंह का जायका बदल गया, जबान पर तरावत आ गई, गला खुल गया और जिस्म के दुखते हुए जोड़ों में इस सर नौ नशात ऊद आग कर आया। जिंदगी का ये कैफ का ये तीर बाहदफ नुस्खा चौधरी साहब को बहुत पसंद आया। अंग्रेजी शराब की बची खुची बोतलें जो टोकरा भर कर बाहर भिजवाई जा रही थी इन्होंने वापस मंगवा लिया और अपने दीवान खाने की अलमारी में एहतियात से रख कर ताला लगा दिया। शाम को अगर जब चौधरी मताबद्दीन हाथी पर बैठकर हसबे ममूल हवाखोरी के लिए निकले तो इन्हें अपने गांव का माहौल कुछ पराया पराया सा लगा। छोटे छोटे बच्चे जो पुलकारियाँ मारकर हाथी की सूंड से लटक जाया करते थे और हाथी इन्हें उठा उठा कर चौधरी मताबद्दीन की गोद में डाल देता था, आज कहीं नज़र ना आए। वो नखेज़ और शरीर लड़कियाँ गायब थी जो चौधरी साहब का रास्ता रोक कर चांदी के कंगनों और सोने की बालियों की फरमाइश किया करती थी। आज किसी ने सरे रहा उसके साथ हल्का फुल्का मजाक ना किया। वो सारा गांव घूम आया लेकिन किसी कोठे की छत से दवाओं की आवाज़ ना आई। ओ बाबा साहबा के खुशबख्त वारस, अल्लाह तुझे सदा ही सुखी रखे। इस बेकैफ सैर को जब चौधरी साहब घर आए मैं जूब और शर्मिंदा से थे लेकिन सरदार ननिहाल सिंह ने शराब की बोतल खोलकर सामने रख दी। तीन पैग पी कर चौधरी साहब फिर चहक उठे। चमकौर के शमशान गलियाँ जादू के जोर से फिर आबाद हो गई। खामोश कोठों पर खूबसूरत परियों के झुरमट नाचने लगे। आसमान पर कौसे कज़ा छा गई। राजा भोग सिंह ने खुश होकर चौधरी मताबद्दीन को अपने हाथ से कई खत लिख कर दिए थे। कुछ परवान ने कलकत्ता में बड़े बड़े अंग्रेज़ों के नाम थे जिनमें चौधरी साहब को वफा शार हुकूमत इंग्लिशिया और मामन दौलत बरतानिया के खताबात से नवाजा गया था और बड़े वसूख से यह तस्दीक की गई थी कि राजा भोग सिंह के बाद सतलुज के इस पार अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा भी ख्वाह चौधरी मताबद्दीन ही है। राजा भोग सिंह की दूसरी सनद महाराजा रंजीत सिंह के दरबार के नाम थी। इसमें चौधरी महताब को सिख पंथ की आंख का तारा और खालसा हुकूमत का राज दुलारा साबित करके यह सर्टिफिकेट दिया गया था कि सतलुज के इस पार राजा भोग सिंह लाहौर दरबार की तलवार और चौधरी महताबद्दीन महाराजा अधीर राज की ढाल है। सरकारी अकाल पुरख ने इन दो वफाओं पोतों को पैदा करके खालसा दरबार को सतलज पार की सरहद से बिल्कुल बेफिक्र कर दी है। राजा भोग सिंह वह गुरु जी का खालसा और चौधरी मताबद्दीन वह गुरु जी की फतेह है। चौधरी मताबद्दीन ने इन नायाब परवानों के लिए रेशम की तय तर तय थैलियाँ सिलवाईं। दिन में कई बार वह थैलियों को नस्ली बटेरों की तरह हाथ में लेकर कभी सुलहाते थे कभी मटियाते। रात के वक्त चुस्की लगाकर थैलियों को बड़े अहतमाम से खोलते और खतों को अदब एहतराम के साथ सरांखों से लगाते और झूम झूम कर बार बार पढ़ते। बदामी कागज़ के ये पुर्जे चौधरी साहब के जहन में जल परियों की तरह नाचते और इनका एक एक हरफ अलहामी परवार की तरह इनकी रूह के रग जेरों पर रंग बिरंग तरश करता। लाहौर और कलकत्ता के शाही दरबारों इन तसव्वुर इनके दिलो दिमाग में फुलझड़ियाँ सी छोड़ता और ख्यालों के गुलो गुलजार में चमकौर की बस्ती बड़ी जलील और मानी नजर आती। यहाँ के लोग तोता चशम थे जो चौधरी मताबद्दीन से कन्नी को चला कर गुजर जाते थे। इन्होंने किसी कत्ल ना किया था, किसी के यहाँ डाका ना डाला था, किसी औरत की आबरू ना लुटी। इसके बरक्स वो तो लोगों की मदद ही करते थे। इन्होंने तो इस गांव को सरबरंद करवाया था। चौधरी मताबद्दीन के तवैल आज दूर दूर तक चमकौर का डंका बजता था लेकिन यहाँ के कमीने लोग अपनी अजमत के इस एहसास से बेबहरा थे। रोज़ बरोज़ मुआसरात की एक ठोकर दीवार चौधरी साहब के इर्द गिर्द उठती चलेगी और अफ्तर सब एक कोड़ी की तरह सब से अलग कट कर अलग थलग पड़े रह गए। सुबह की सैर बंद होगी, शाम को हाथी की सवारी भी मौकूफ होगी। दिन भर वो अपनी हवेली में बंद रहते थे ताकि गांव वालों से मठ भीड़ ना हो। जो आंखें चार होते ही मुंह दूसरी तरफ फेर लेते थे। माहौल की इस पागल कर देने वाली बेगानगी से घबरा कर चौधरी मताबद्दीन ने रखते सफर बांधा और एक हाथी तीन रिथ 50 सवार और बहुत से प्यादों की जमीयत लेकर इन्होंने कलकत्ते का रुख किया। जब चौधरी मताबद्दीन की सवारी रवाना हुई तो गोया ताउन का चूहा गांव से निकल गया। लोगों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बच्चों ने इस सर नौ हवेली के मैदान में गुल्ली डंडा खेलना शुरू कर दिया। जवान लड़कियों ने हसबे ममूल कोठों पर बैठकर बाबा साहब के दोहे गाने शुरू कर दिए जिनमें आईना तो इश्क इलाही का होता था लेकिन अक्स नोखेज़ मटियारों की आरजू व अंगेज सपनों नई दूलनों के मुतलातम बलबलों और मुंतजर सुहागनों की आस का पड़ता था। यहाँ तक आकर दादी अम्मा का सीना बसीना रवायात का सिलसिला मुंतका हो जाता था। चौधरी मताबद्दीन कहाँ गए, उनका अंजाम क्या हुआ, दादी अम्मा कोई बात वसूख से ना बता सकती थी। एक अफवाह ये थी कि कलकत्ता की राह में कोसी नदी के किनारे उनकी मुलाकात एक मजजूब साई रेता शाह से होगी, जो रेत की मुठियाँ भर भर कर मुँह में डालते थे और उसे बदामों की तरह चबाते रहते थे। चौधरी मताबद्दीन ने अपने लाहौल लश्कर को खैरबाद कहा और कलंदराना वाजे तैयार करके रेता शाह की खिदमत में बैठ गया। दूसरी खबर यह थी कि बनारस के शहर में सुबह बनारस की सैर देखते देखते वो एक ब्राह्मणी पर हज़ार जान से आशक हो गया था, जो गंगा में स्नान करने के बाद सूरज देवता को जल चढ़ा रही थी। इसी आशिकी में इन्होंने चार अबरू का सफाया कर दिया और एक हिंदू व स्वामी का चेला बनकर जोग ले लिया। जितने मुँह इतनी बातें, लेकिन हमारे बड़े बूढ़ों ने अपनी अना की हफाजत के लिए ये मफरूजा पाल रखा था कि ये सब पापड़ बेलने के बाद चौधरी साहब लाहौर दाता साहब के दरबार में गोशा नशीन हो गए और चंद साल बाद सिखों के खिलाफ किसी मार्का में जहाद करते हुए जहां में शहादत नोश फरमाया। चुनाचा दादी अम्मा अपनी चादर का पल्लू फैला कर बड़ी अकीदत से दुआ मांगा करती थी, अल्लाह चौधरी महताबद्दीन को कदम कदम पर जन्नत नसीब करे, वो दीन और दुनिया दोनों से सरफरू होकर अगले जहाँ सुधारा है। मुझे इस बात से कोई गर्द ना थी कि चौधरी महताबद्दीन मैदान जहाज में शहीद हुए थे, या साईं रेता शाह के कदमों में फौत हुए थे, या बनारस की हिंदू बरहमनी के जोग में सोर्गबाश हो गए थे। मेरे दिल दिमाग पर तो उनके सीमाब की तरह मुस्तरब करदार की वो कलमोनी ने ऐसा गिरफ्त जमा ली थी कि जैसे बड़े साइज का मकनातीस चुटकी भर लोहा चून को अपनी कशिश में जकड़ लेता है। मेरे जहन से हरी टाकिस जम्मू के गेट कीपरी और रेलवे ट्रेन का गार्ड बनने के ख्याल का कफूर की तरह उड़ गया था। चौधरी महताबद्दीन के नक्शे कदम पर चलने की आरजू ने मुझे मगरमच्छ की तरह गड़ाप से निकल लिया था। अजीबो गरीब ख्वाहिशात की इस दलदल ने मुझे करम बख्श ने निकाला। करम बख्श बचपन ही से दादी अम्मा का मुलाजम था, अब इसकी उम्र 70 बरस से ऊपर थी, लेकिन वो दिन रात तंदोमंद बैल की तरह बेतगान काम करता था। उसका तन बदन खारदार कीकर की तरह सख्त और करख्त था, लेकिन दिल बड़ा गुजार था। को तो वो बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल था, लेकिन यूसुफ जुलेखा के किस्से की किताब हाथ में उल्टी पकड़कर वो सही तरतीब से सारी अशार फर फर सुना देता था। अगर किताब उसके हाथ से ले ली जाए तो उसकी ज़ुबान पर नज़म करवाने भी वहीं रुक जाती थी। वो खुद भी पंजाबी में बैत कहता था। कभी कभी चौधरी महताबद्दीन के किस्से सुनाकर जब दादी अम्मा अजीब सी ले लेकर बाबा शहाबुद्दीन के गोरखमुखी दोहे लापने लगती थी तो करम बख्श ही पास बैठकर हमें उनका मतलब समझाया करता था। कहीं कहीं बाबा साहब के कलाम और बयान में हंसपे ज़रूरत इसलाह भी देता रहता था। बाबा शहाबुद्दीन साहब दोहों का रंग कुछ इस तरह का होता था। ओ मेरे यार, मैंने आज तक तेरे बाग में कदम नहीं रखा, मैं क्या जानूँ तेरे फूल पीले हैं या सुरख हैं या सफ़ेद हैं, जो तेरा रंग है वही मेरा रंग है, मैं तो तेरे बाग में आंखों के बल जाऊंगी। ओ मेरे यार, तेरे दामन को मैंने कभी नहीं छुआ, तेरा दामन बादलों से परे सितारों से ऊंचा है, मैं बेचारी तो कभी तेरे ख्याल के दामन को भी ना छू सकी, तेरा ख्याल तुझसे भी ज़्यादा ताबनाक है क्योंकि इसको मैंने खुद अपने हाथों से सजाती हूँ। ओ मेरे यार, रात की खलबत में मैंने तुझको लम्हा भर के लिए आखिर पा ही लिया, अब मेरी सहेलियां मुझे ताना देती हैं कि ये महज ख्वाब था, ऐसे ख्वाब पर हज़ारों बेदारियां कुर्बान, मैं तो इसी के इंतज़ार में पड़ी सोती हूँ। ओ मेरे यार, मैं तो तेरे काम बहुत काम आती हूँ, देख मैं तेरे रुख पर अपने तसव्वुर का हजाब डाल रखा है, अगर मैं अपने तसव्वुर की ज़रा सी आँख बंद कर लूँ तो सारी दुनिया तुझे बेनकाब देख लेगी। ओ मेरे यार, तू अहद है, तू समद है, तू अबद है, तू अजल है, शुक्र कर तू मेरी गली का अलबेला जवान नहीं, वरना मैं तुझे खूब सताती, खूब तरसाती, खूब तड़पाती, तुझे बड़ी बड़ी आजमाइशों में डालती और सारा सारा दिन अपने दरवाजे की ओर से झांक झांक कर तेरा तमाशा देखा करती। ओ मेरे यार, तू अजीज है, तू हफीज है, तू करीम है, तू हलीम है, शुक्र कर तू मेरे सपने का अरमान नहीं। ओ मेरे यार, तू वहाब है, तू सितार है, तू तवाब है, तू गफार है, शुक्र कर तू हमारे खेत का राखा नहीं, वरना मैं हर रोज तुझे चोरी चोरी मिलने आया करती, तो खाली कर ही ना सकता, सारे खेत को चिड़ियाँ चुग जाती। ओ मेरे यार, तू महमूद है, तू मसजूद है, तू मकसूद है, तू मौजूद है, शुक्र कर तू मैं नहीं वरना ना जाने तेरा क्या हाल होता। सफ़ा नंबर 51। राज पुरूगा खालसा बाकी रहे ना कोई। दादी अम्मा और करम बख्श मुझे BASJH खालसा हाई स्कूल में दाखिल करवाने के लिए अपने साथ ले गए। स्कूल का पूरा नाम बाबा अजीत सिंह झज्झार हरी खालसा हाई स्कूल था और गुरु के दो साहबजादों के नाम पर काम कैम किया गया था। जिन्हें सिखों की फर्जी रवायात के मुताबिक मुसलमान हाकमों ने एक मुहक्का गुरुद्वारे की दीवारों में जिंदा गड़वा दिया था। हेडमास्टर सुराज सिंह ने रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज करने के बाद दादी अम्मा से पूछा, ताई बच्चे की उम्र 10 साल लिख दूँ? दादी अम्मा को सारा गांव ताई कहा करता था। फूट तेरा फिटे मुँह, दादी अम्मा ने हेडमास्टर को डांटा, तू अंधा हो गया, तुझे दिखाई नहीं देता मेरा पोता 15 वर्ष से एक दिन कम नहीं। दादी अम्मा के नज़दीक बच्चों की उम्र ज़्यादा जितवाना बाइस इफ्तखार था। इससे तलीम भी जल्द ख़त्म हो जाती थी और नौकरी भी जल्द मिलने का अमकान बढ़ जाता था। इस मसले पर हेडमास्टर सुराज सिंह और दादी अम्मा के दरमियान बहसा बहसी होने लगी तो करम बख्श ने नजूमी की तरह ज़मीन पर आड़ी तरीछी लकीरें खींच कर जैचा बनाया और सालस बनकर अपना फैसला सादर कर दिया। मास्टर जी इसकी उम्र 13 साल 3 महीने 3 दिन लिख दो। हेडमास्टर ने जज्बज होकर अटकल पिछकू से रजिस्टर में मेरी उम्र का अंदराज कर दिया और किबला वाला साहब की वो डायरियाँ धरी की धरी रह गई जिनमें उन्होंने हर बच्चे की पैदाइश के साथ दिन महीना और साल ईस्वी हिजरी और बकरमी हिसाब से अलग अलग नोट की हुई थी। उम्र के हिसाब से हेडमास्टर ने मुझे 2 साल आगे की क्लास में दाखिल कर लिया और साथ ही ये हुक्म भी सुनाया, अगले साल वर्निकोलर फाइनल का इम्तिहान देना होगा, अगर वजीफा ना लिया तो कान पकड़ कर स्कूल से निकाल दूँगा। पहले रोज़ जब मैं अपनी जमात में गया तो नया कुर्ता कोरे लट्ठे का नया खड़खड़ करता हुआ पजामा और पुदने वाली सुरख रूमी टोपी पहनी हुई थी। मुझे इस हैबत कसाई में देखकर बहुत से हिंदू और सिख लड़के मुंह में उंगलियां डालकर सीटियां बजाने लगे और ज़ोर ज़ोर से गाल फुला फुला कर बुकरे बुलाने लगे। एक लड़के ने रूमी टोपी का फुंदा नोच कर तोड़ लिया और उसे बुरश की तरह अपने गालों पर फेरने लगा। दूसरे ने धूल जमा कर टोपी को पिचका दिया। तीसरा ठोकरे मार कर मेरी पैंट लेदर की काली गरगाबी को मसलने लगा। कई सिख लड़के मेरे इर्द घेरा डालकर खड़े हो गए और लहक लहक कर भांत भांत के आवाज़ें कसने लगे, फौजां शहरों आईयां हैं, फौजां कट मट कर दियां हैं, फौजां पढ़ाइयां करेंगी, फौजां बाबू बनेंगी, फौजां टोपी लेती हैं, फौजां मुसले होती हैं। इन बेतरपे सवालात के बाद उन्होंने घोंसे तान तार कर हवा में घुमाए और ब्याक वक्त ज़ोर ज़ोर से गाने लगे, राज गुरु का खालसा बाकी रहे ना कोई। इतने में कोई पुकारा कि मास्टर जी आ रहे हैं। सब लड़के फौरन शराफत से अपने अपने डेस्क पर बैठ गए। मैं अपनी जगह हैरानी और परेशानी के आलम में खड़े का खड़ा रह गया। मास्टर मंगल सिंह उर्दू और रियाजी के साथ उन्होंने सर से पांव तक मेरा जायज़ा लिया और रूमी टोपी की जगह पगड़ी बांध कर स्कूल आने की हदायत की। इन्होंने थोड़ी देर सबक पढ़ाया और ज़्यादा देर बहुत से लड़कों की बुरी तरह पटाई की। फारसी के पीरियड में पंडित श्री राम ने भी यही अमल दोहराया। पंडित जगतनाथ अंग्रेज़ी पढ़ाते थे, उन्हें मारने पीटने की जगह फकत कान रोड़ने पर इतफाका करते थे। अलबत्ता तारीख और जोग्राफिया का सबक सुकून से हो जाया करता था क्योंकि मास्टर तारा सिंह ना कभी हंसते थे ना मुस्कुराते थे ना मारते थे। स्कूल का असली हवा मास्टर मंगल सिंह ही थे। उर्दू पढ़ाने में इन्हीं खास मलका हासिल था। उर्दू का सबक वो ठीठ पंजाबी में दिया करते थे और अशार की तशरीह करने में उनका अपना ही निराला अंदाज था। एक बार गालिब का ये शेर आया, सादगी व पुरकारी, बेखुदी व होशियारी, हुसन को तगाफल में जुरत अजमाया पाया। इस शेर को उन्होंने हमें यूं समझाया, सादगी दे उत्ते नाल पुरकारी, बेखुदी दे उस दे नाल नाल होशियारी, हुसन नू तगाफल दे विच की पाया। शायर कहता है कि इसने हुसन नू तगाफल दे विच जुरत अजमा पाया। लिवांदी जई गल सी, गालिब शेर बनांदा मर गया, मैं शेर समझांदे मर जाना है, तुहाडे कोड़ मगजां दे पल्ले कख नहीं पैना, अगे चलो। सादगी और उसके साथ प्रकारी, बेखुदी और उसके साथ साथ होशियारी, हसन को तगाफल में क्या पाया, शायर ने हसन को तगाफल में जुर्रत अजमा पाया। लो इतनी सी बात थी गाफल, गालिब शेर बनाता मर गया, मैं शेर समझाते मर जावांगा, लेकिन तुम कोड़ मगजों के पल्ले कुछ नहीं पढ़ने का आगे चलो। उर्दू के अलावा मास्टर मंगल सिंह रियाजी इल्मे रियाजी में भी काम आते हैं। और ये और बात है कि सवालात हल करते वक्त जमा तफरीक तकसीम की जगह वो तलबा पर ज़र्ब का अमल ज़्यादा बरोकार लाते थे। हकीकतन उनकी असली शरह सदर सरफ ज़रकोब के फन में हासिल थी। ज़रा सी भूल चूक पर वो कसाब की तरह तालब इलम पर लपकते थे, उसे गर्दन से दबोच कर हवा में उछालते थे और फिर उस पर लातों मुक्कों और थपड़ों की ऐसी ताबर तोड़ बारिश बरसाते थे कि देखने वालों को भी दिन में तारे नजर आने लगते थे। हर रोज़ ऐसी दो व तीन तीन पटाइयाँ देख कर स्कूल का एक एक लम्हा मेरे लिए सुहाने रूह बन गया। हर वक्त सर पर खौफ की नंगी तलवार लटकती रहती थी कि न जाने किस वक्त इस मारपीट का कुरा फाल अचानक मेरे नाम निकला है। यह ख्याल आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे और सर से पांव तक पसीना छूटने लगता था। एक रोज़ मैं तैयार होकर स्कूल जाने को था कि घर में किसी को ज़ोर से छींक आई। दादी मैंने छींकने वाले को बुरी तरह कोसा और मुझे वापस बुलाकर बैठा लिया, क्योंकि काम पर रवानगी के वक्त किसी का छींक देना बदशगुनी की अलामत थी। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मुझे दोबारा स्कूल सुधारने की इजाज़त मिली, लेकिन इस बदशगुनी ने मेरे पाँव मन मन के भारी कर दिए थे। मेरे दिल को यकीन सा हो गया था कि आज के दिन ही वो रोज़े मऊद है जब मास्टर मंगल सिंह के हाथों मेरी पिटाई की बारी आने वाली है। इस ख्वाब का भूत मेरे सर पर कुछ इसी शिद्दत से सवार हो गया कि मैंने स्कूल जाने की बजाय सीधा नहर की राह ली। नहर सारे हिंद के किनारे बेरियों के दरख्त, बेरियों के जंगल थे, आमों के बाग थे और खजूरों के झुंड दूर दूर तक फैले हुए थे। मैंने बड़े मज़े से बेर चुनने, कच्ची अम्बियाँ और खजूरें खाने में मसरूफ़ था कि एक जगह अचानक करम बख्श से मिड भीड़ हो गई। वो मवेशियों के लिए चारा लाने शामलात दहिया की तरफ जा रहा था। मैंने भागकर कुछ झुंडों में रुपोश होने की कोशिश की तो इसने लपक कर मेरा टेटवा लिया। मजबूरन मैंने बड़ी दर्दनाकी से स्कूल की सारी राम खानी उसे सुना दी। अब मदरसे नहीं जाओगे, करम बख्श ने पूछा। बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैंने शद्दोमद से जवाब दिया। हाँ जी हाँ, करम बख्श बोला, किताबों में क्या रखा है, ऐश की ज़िंदगी तो मेरी तरह घास खोदने में है। बच्चों आओ आज तुम्हें यह कर्तव्य भी सिखा दूँ। मैं खुश खुश करम बख्श के हमरा चल पड़ा। वो बड़े आराम से बरहना पा चला जा रहा था। तेज़ तेज नुकेली सूलों वाले खजूर के सूखे हुए ठोडे जा बजा उसके पाँव तले आते थे और वो चुरमुर करके टूट जाते थे। उसकी एड़ियों में जगह जगह बड़े शगाफ थे। हर साल सर्दी में वो कस्बा के मोची के पास जाता था और जिस तरह दूसरे लोग अपने टूटे हुए जूते मरम्मत कराते थे, करम बख्श खड़े खड़े अपनी एड़ियों की फटी हुई खाल सलवा लेता था। शाम लात दहिया में कई जगह घुटने घुटने तक घास लहरा रही थी। एक मुकाम पर करम बख्श ने तेज़ तेज़ हाथ मार कर घास दराती से काटने और छुरी छोटी घास खुरपे से खोदने का गुर मुझे सिखाया और हुक्म दिया कि जल्दी जल्दी घास की एक पंड खोद लूँ। डंगर भूखे खड़े मेरी जान को रो रहे होंगे। मैं दरांती और खुरपाले का काम शुरू करने वाला था कि करम बख्श ने पुकार कर कुछ और हदायत दी। बिछुआ कन खजूरा नजर आए तो खबरदार, खुरपा और दरांती खराब ना करना, इन्हें पाँव से मसल कर मार डालना। सांप सपोलिया स्लंग पोट मिले तो फौरन मुझे हांक मारना, मैं अच्छा वजीफा पढ़ के इन्हें पकड़ लूँगा। सांप से तो खैर मैं वाकफ था, लेकिन बाकी नाम मेरे लिए अजनबी थे। बिजू के मतलब करम बख्श ने इतला दी कि महीन आंखों वाला बड़ा होशियार जानवर है और कब्रों से ताज़ा मुर्दे निकाल कर अकड़ों बिठा लेना या कट पुतलियों की तरह अपने साथ साथ चला लेना इसका दिल पसंद मशगला है। लसंग पोर्ट इंसान की गुद्दी में बैठकर अपने पंजे पेचकस की तरह इसकी खोपड़ी में गाड़ता है और चूँच से ठोंके मार मार कर ताज़ा भेजा खाने का बड़ा शौकीन है। करम बख्श तो एक दरख्त के साय में आलती पालती मार कर बैठ गया और कमर से हज़ार मनकों वाली तस्बी खोल कर वजीफा करने लगा, लेकिन मेरी हिम्मत के बाद बांध की सारी हवाएं ठस से निकल गईं। एक तो मुझसे घास ही ना कटती थी, दूसरा कदम कदम पर अजीबो गरीब हशरात और अर्ज का खौफ मेरे दिल पर हथौड़े मारता था। एक दो जगह सुराखों में सांप की खिजली फंसी नजर आई तो मैं भाग खड़ा हुआ और करम बख्श के पास आकर बड़ी आजिज़ी से हाथ डाल दिए। अच्छा अच्छा, घास तो मैं खोद ही लूँगा, तुम कल से स्कूल जाओगे ना, इसने पूछा। बिल्कुल नहीं बे, मैंने जाजम जवाब दिया। करम बख्श चमक कर उठा, पहलवानों की तरह से मुझे कलावे में लेकर हथकटी लगाई और फिर पालट कर मार कर मुंह बल जमीन पर करा दिया। उसने एक पांव मेरी गर्दन पर रखा और दूसरी एड़ी से मेरी कमर पर बेदरपे दर्ब लगाने लगा। मुकाबला तो दिल नतवा ने खूब किया, लेकिन तब के आखिर स्कूल के बारे में भी मैंने मजबूरन हथियार डाल दिए। तौबा करो और नाक से ज़मीन पर सात लकीरें खींचो, करम बख्श ने हुक्म दिया। मैंने हुक्म की तमील कर दी, कसम खाओ कि दोबारा स्कूल से नहीं भागो। करम बख्श ने दूसरा हुक्म, मैंने फौरन कसम खा ली। इस फर्ज मनसबी से फारग होकर करम बख्श ने घास खोद दी और फिर आराम से बैठकर ज़मीन में एक दूसरे से कुछ फासले पर तीन तीन चार चार इंच गहरे दो सुराख खोदे। मैंने समझा कि शायद अब हम अखरोट या बांटे खेलेंगे, लेकिन उसने बड़ी चाबक दस्ती से जेरे ज़मीन टनल से खोद कर दोनों सुराखों को आपस में मिला दिया। एक सुराख में इसने कोई ऐसी चीज़ ठोंसी जैसे पाइप में तंबाकू भरा जाता है। दूसरे सुराख में अपने होंठ फिट करके वो मुंह के बल ज़मीन पर लेट गया और सरकंड जुलाकर पहले सुराख पर रख दिया। करम बख्श ने ज़ोर ज़ोर से दो चार सूटे मारे, आग का शोला सलपका और फिर वो पास पड़ी हुई एक ईंट पर सर टिका कर गट सो गया। गाजे के इस अमल के दो घंटे के बाद जब वो जागा तो खूब चुस्त था। वापसी पर करम बख्श गुलहरी की तरह एक खजूर के दरख्त पर चढ़ गया और पकी हुई रसीली खजूरों का एक गुच्छा मुझे खाने को दिया। साहब ही वादा किया कि आज की बात वो घर में किसी को ना बताए। दूसरे दिन मैंने अपनी कसम तोड़ दी और फिर स्कूल ना गया। अलबत्ता करम बख्श की जात से महफूज रहने के लिए नहर पर जाने के बजाय गुक्का माड़ी चला गया। गुक्का माड़ी में एक कच्चा कोठा था जो गांव से दो ढाई मील बाहर एक लकधक रेतले टेले पर बना हुआ था। उसके अंदर चक्की के पाट की तरह एक गोल चबूतरा था। मुसलमान इसे गुक्का पीर की कब्र समझकर यहां फातिहा दुरूद पढ़ते थे। हिंदुओं के नज़दीक ये गुग्गा साईं की समाधि थी, क्योंकि उनके अतकाद के मुताबिक गुग्गा एक हिंदू परम हंस था और मरने के बाद उसकी राख पर यह समाधि बना दी गई थी। चूड़े चमार इसे अपना रूहानी पेशवा मानकर यहां पर तरह तरह की पूजा पाठ और जादू टूना किया करते थे। इलाके के हिजड़े भी यहाँ जमा होकर गधे की महफल जमाते थे और अकीदत बंदी से गाना गाते थे। गुग्गा माड़ी के अंदर कुछ लोग अपने अपने तरीके से गुग्गा पीर को खराज अकीदत पेश करने में मसरूफ़ थे। बाहर दो काले बझंग आदमी लंगोट बांधे और गले में बड़े बड़े ढोल लटकाए दम धनाती धमा दम धैया दमक धैया की ताल पर ज़ोर ज़ोर से ढोल बजा रहे थे। उनके गिर्द चार पांच आदमी बड़े वलहाना तौर पर हाल खेल रहे थे। कभी वो पंजे उठाकर अपनी एड़ियों पर लट्टू की तरह घूमते थे, कभी ज़मीन पर चार दानों बैठकर मेंढक की तरह फुदकते थे, कभी सर के बाल खड़े होकर ढोल वालों के गिर्द तेज तेज ब्योदी दायरे काटते थे। इनमें से एक शख्स भी सबसे ज़्यादा सरमस्ती के आलम में हाल खेल रहा था, वो करम बख्श था। करम बख्श की आंखों में लाल लाल अंगारे चमक रहे थे। उसकी दाढ़ी के मोटे मोटे बाल गजबनाक खार पुश्त के होंठों के कांटों की तरह चेहरे पर इस तादा थे। उनका अंग अंग यूं थरक रहा था जैसे जाल में फंसी हुई मछलियां फड़क फड़क कर तड़पती हैं। मुंह से कोई लफ्ज़ कहे बगैर करम बख्श ने मेरी गर्दन नापी और ढोल वालों से कुछ दूर तपती हुई रेत पर कान पकड़वा कर मेरा मुर्गा बना दिया। एक लड़के को उसने मेरी चौकीदारी पर ममूर किया और खुद हाल खेलने वालों के हलके में शामिल हो गया। धूप में कान पकड़े पकड़े मेरे इंजर पिंजर ढीले हो गए। ढोल की हर धमक मेरे दिलो दिमाग पर तोप के गोले की तरह बरस रही थी। अगर कोई इक्का दुक्का राहगीर आपस में बातचीत करते हुए करीब से गुजरते थे तो उनकी आवाज़ मेरे कान में देर तक गूंजती रहती थी, जैसे बहुत से कुत्ते अंधे कुएं में मिलकर लगातार रो रहे हों। मालूम नहीं इस हालत में एक घंटा गुजर गया या एक साल निकला या एक सदी बीत गई, क्योंकि जब हाल फारग होकर करम बख्श ने मुझे कान छोड़ने का मुसद्दा सुनाया तो मेरी कमर पीर फरौत की तरह खमीदा हो चुकी थी और मुझसे सीधा खड़ा ना हुआ जाता था। करम बख्श ने पीछे से मेरी बगलों में हाथ डाले और अपना गुटला जोर से पीठ में मारकर मेरी कमर सीधी की और फिर इसने हुक्म दिया कि ज़मीन पर नाक से 21 लकीरें निकाल कर तौबा करो। मैंने तपती हुई रेत पर नाक से 21 लकीरें निकाल दी। कसम खाओ कि अब पढ़ाई से ना भागो कि करम बख्श कड़का। मैंने बाखुशी अल्लाह की कसम खा ली। रसूल की कसम खाओ, करम बख्श ने कहा। मैंने बिला तकल्लफ रसूल अल्लाह की कसम भी खा ली। कुरान की कसम खाओ, मैंने इसकी भी तामील कर दी। अब अपनी जान की कसम भी खाओ, करम बख्श ने हुक्म लगाया। ये कसम खाने से मैं हिचकिचा गया, क्योंकि मुझे अपनी जान अल्लाह और रसूल और कुरान शरीफ से बहरहाल ज़्यादा अजीज थी। करम बख्श ने आओ देखा ना ताओ और मेरे मुंह पर जनाटे से ऐसा करारा थप्पड़ मारा कि मेरे सर में बड़ों के बेछत्ते भिनभिना उठे। दूसरा थप्पड़ लगने से पहले मैंने करम बख्श का हुक्म मान लिया और अपनी जान की कसम भी खा ली। जान की कसम तोड़ने के होलनाक नतायज का करम बख्श ने कुछ ऐसा बेसरोपा और बेरब सा नक्शा बांधा कि मुझे बेख्तियार हंसी आने लगी। हंसी रोकने की कोशिश में मुझे हिचकी लगी और गले से रंदी रंदी सी आवाज़ें निकलने लगी, जैसे कि गले में तरबूज का छिलका फंस जाता है। करम बख्श समझा के खौफ व हरास से मेरी घिग्गी बंद गया। इसका असर को मज़ीद कुमक पचाने के लिए मैंने अपने बदन में मसनू कप कभी तारी की और कुछ तेज़ तेज़ झुरझुरियाँ भी ली। کرم بخش خوشی سے پھول کر کھپا ہو گیا اور اس کی انا کی تسکین گرم گرم بھاپ کی طرح اس کے کانوں ماتھے اور گالوں اور ناک پر چھا گئی۔ کرم بخش کو اچھے موڈ میں دیکھ کر میں نے کہا، چاچا تمہارے پاس تو کوئی جادو ہے، میں اسکول سے بھاگ کر جدھر جاتا ہوں تم بھی وہاں آ جاتے ہو۔ کرم بخش نے اصیل مرغ کی طرح فخریہ چھاتی پھلائی اور دودن کی لے کر کہنے لگا، جادو ٹونا تو پلیت کافروں کا کرتب ہے، کرم بخش کے پاس تو رب کا سچے کا اچپا وظیفہ ہے، تم ولی جاؤ یا دکن چلے جاؤ۔ کرم بخش کا ہاتھ تیری گردن پر ایسے جا پڑے گا جیسے مرغی کھنگار پر گرتی ہے۔ کرم بخش کی مزید خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں نے کہا، چاچا تمہارے وظیفے نے تو بڑے بڑے مار کے مارے ہوں گے، اس سے گول کچھ نہ پرول۔ کرم بخش نے محاورتن کہا کہ ڈکی چھپی بات کو زیادہ نہ کرے دو، چچا وظیفے نے کچھ نہ کچھ تو رنگ لگایا ہوگا۔ میں نے خوش آمدانہ اصرار کیا، رہے نام رب سچے دا۔ کرم بخش نے سینہ تان کر کہا، کوئی رنگ جیسا رنگ لگایا ہے، بیٹ بیلے بار سب جگہ کرم بخش ہی کرم بخش کا نام گونجتا تھا۔ بڑے بڑے جٹا دھاری مہانت بہان ماتی کے جوگی اور گیانی تیرے چچا کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ جوش میں آ کر کرم بخش نے اپنے وظیفے کی کرامات کی مہیر کل عقول دستانوں کا تاندہ باندھ دیا۔ بھوت پریت چڑیل چلاوا چھلیڈا وڈاوا سے مقابلہ کرنا، جن اتارنا اور لوٹے میں سر بمہر کر کے جلا ڈالنا، آوا پریوا دودھ مکھن باندھنا اور کھولنا، خوب اور بوس کے فریتے جلانا، مکھویری اداد کے لیے ہنڈیا چھوڑنا، بان جلانا، آٹے کی پتلیوں میں سوئیاں گاڑ کر دشمن کو اذا پہنچانا، سانپ بچھو اور بھڑ کے کاٹے اور آدھا سیسی درد کو جھاڑنا، داڑھ نکالنا، چور پکڑنے کے لیے لوٹا گھمانا، مجبوری کی حالت میں بقدر ضرورت دست غیب حاصل کرنا، یہ سب کرم بخش کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ لیکن اس کے جس کمال نے میرے ذہن پر سب سے زیادہ اثر کیا وہ تسخیر محبوب کا عمل تھا۔ بھرے میلے میں بڑی بڑی صاحب جمال حسن و جمال جٹانیاں اپنے بانکے چھبیلے جوانوں کو چھوڑ کر اس پھٹی ہوئی ایڑیوں اور پیلے دانتوں والے کریال منظر بڈھے کے پیچھے یوں لگ جاتی تھیں جیسے مکھیاں گڑ سے چپک جاتی ہیں۔ کرم بخش کچھ دیر انہی اپنی ڈور کے ساتھ لگائے گھومتا پھرتا، پھر انہی مٹھیائی کے لیے کچھ پیسے دے کر رخصت کر دیتا تھا۔ تیرے چاچے پر وجود کا عشق حرام ہے، کرم بخش نے دبی دبی حسرت سے مجھے بتایا، اس لیے تو مرشد نے شادی کی اجازت نہیں دی۔ مجھے اس برہمچاری بڈھے کی حماقت پر ہنسی بھی آئی اور ترس بھی آیا، لیکن بظاہر میں نے اس کی اتنی تعریف کی کہ وہ خوش ہو کر مجھے مگی بنیے کی دکان پر جلیبیاں کھلانے لے گیا۔ مگی رام چکور چمکور صاحب کا وہاں ہلوائی تھا، وہ سارا دن لنگوٹ باندھے بڑے بڑے کڑاہوں میں جلیبیاں تلتا تھا یا موتی چور کے لڈو بناتا تھا، جنہیں سکھ جاٹ شرطیں بد بد کر سیروں کے حساب سے وہیں کھڑے کھڑے کھا کر جاتے تھے۔ ماکھی رام کا بوڑھا باپ ایک میلی سی دھوتی باندھے اور سر پر ڈھیلی ڈالی پگڑی ٹکائے اکڑوں بیٹھا بھٹی جھونکتا رہتا تھا۔ اس کا چہرہ پکے ہوئے انناس کی طرح پیلی پیلی گلابی گلابی گدری گدری جھڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان مہین مہین چندیائی ہوئی آنکھوں پر لمبی لمبی سفید موہیں ایسے لٹکتی تھی جیسے اس نے ماتھے پر ململ کی جھالر ٹانگ رکھی ہو۔ دونوں باپ بیٹا کرم بخش کو دیکھ کر بےحد خوش ہوئے۔ واہ بیوا کرم بخشا، ماگھی رام بولا، پرماتما کی کرپا سے تم خود ہی آ گیا، میں تو تیری تلاش میں نکلنے والا تھا۔ ماگھی بنیا نے چہک چہک کر ہمیں بتایا کہ 5 روپے ڈال کر اس نے بازار مائی سیوا امرتسر میں لاٹری کا ٹکٹ لیا تھا، لاٹری اس کے نام نکل آئی ہے، مال بھی چل پڑا ہے اور آج ہی کشتی سے چمکور پہنچ رہا ہے۔ کرم بخشا، ماگھی رام نے کہا، تم گڈا بیل گاڑی جوڑ کے فٹافٹ گھاٹ پر پہنچ جا، کشتی آتے ہی مال چھپا کر دکان پر لانا ہے، ایک سیر پختہ لڈو تجھے دوں گا، آدھا سیر گڈ بیلوں کے لیے ملے گا۔ واہ جی واہ، کرم بخش نے ناراضگی سے جواب دیا، کرم بخش تیرے باپ کا نوکر ہے، جو ہوا ادھر تو نے حکم دیا ادھر میں گڈھا لے کر نہر پر پہنچا، لالا کبھی تو نے شیشے میں اپنی صورت بھی دیکھی ہے، چلو 4 آنے نقد بھی لے لینا۔ ماگھی رام نے حاتم تائی کی لات پر قبر ماری، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے بھلا، ہزاروں کا مال مفت آ رہا ہے اور کرم بخش کو چوانی پر چڑھاتے ہو، لالا تم بڑے ندیدے ہو، کرم بخش نے کہا۔ دفتر ماگھی رام کے بڈھے باپ نے بھی اپنی چندیائی ہوئی آنکھیں کھولی اور کرم بخش کو غصے سے گور کر بولا، ہزاروں کا مال کون لا कौन साला बकता है, बड़ी लॉटरी का टिकट था, कोई माहौल नहीं, लाख से कम का माल निकले तो मैं पेशाब दाढ़ी मंडवा दूंगा। कुछ मजीद चुक चुक बक बक के बाद बैलगाड़ी की इज्जत तय होगी। 1 रुपया नकद, 2 सिर मिठाई, बैलों के लिए 1 सिर गुड़। बयाने के तौर पर करम बख्श ने आधा सिर जलेबियाँ पेशगी तलवा ली और हम मज़े मज़े से जलेबियाँ ठोकते खलियान पहुँचे। करम बख्श ने बैलगाड़ी तैयार की और थोड़ी देर में हम नहर पर कश्ती घाट पहुँच गए। माघी राम और उसका बाप पहले से आए बैठे थे और एड़ियाँ उठा उठा कर आँखें फाड़ पर कर दोराहे से आने वाली कश्ती का इंतज़ार कर रहे थे। खुदा खुदा करके कश्ती आई और माघी राम ने अपने माल की बिल्टी चुड़ाई। ये माल लकड़ी की 3 पेटियों पर मुश्तमिल था, जिन पर लोहे की पतरी चढ़ाकर मीखों के साथ ठोंका हुआ था। किसी पेटी का वजन 1.5-2 मन से कम ना था। बैलगाड़ी में माघी राम और उसका बाप एक एक पेटी पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गए। तीसरी पेटी पर मैं चढ़ने लगा तो उन्होंने डांट कर मना कर दिया, क्योंकि मेरे वजन से उनके मालूम था कि अब किनों को लहोक जरर का इतमाल था। रास्ता बार बाप बेटा उम्मीद के अजीबो गरीब दश्त व दरिया में ललचाए हुए क्यास के घोड़े दुराते रहे। लकड़ी की ये 3 पेटियाँ कभी रेशम और जरबफ और कम ख्वाब के थान बन जाती थीं, कभी उनके धानों से सोने के कंगन और चांदी के थाल झांकने लगते थे, कभी इनके अंदर से बलोरी फनूसों और शीशा के आलात की मधुम सी घनघन सुनाई पड़ती थी। माघी राम के बाद की कुव्वत लासमा पेटियों के ऊपर हाथ फेर फेर कर अब इस यकीन की अलान तस्दीक करने लगी थी कि ये माल 1.5-2 लाख रुपए से कम का तो नहीं हो सकता। उसका प्रोग्राम ये था कि लॉटरी का माल जल्द अज जल्द बेच बचा के सारा कुंभा हर दरबार जा बसे और वहाँ आराम से बैठकर राम नाम की माला जपने में मसरूफ हो जाए। लेकिन माघी राम को इस लाह अमल से शदीद इख्तलाफ था। लो और सुनो, वो हकारत से नसा, बापू की अकल भी घास चरने गई है। बेखंड सुधारने का वक़्त तो इसका अपना आया हुआ है और अपने साथ हर द्वार हमें भी हाँकता है। बापू तुम जम जम हर द्वार जाओ, तुम्हारे खाने पीने के दिन तो अब आए हैं। माघी राम का फैसला था कि लॉटरी का माल बेचकर वो लुधियाना में दुकान खोलेगा। वो कई बार लुधियाना जाकर बाइस्कोप देख आया था। फिल्म नाचती हुई मेमों का नक्शा उसने कुछ ऐसी फसासत और बलागत से खींचा कि इस बुढ़े के मुंह से भी जलेबियों के शीरे की तरह बेख्तियार लाल टपकने लगे और वो बखुशी इस बात पर रजामंद हो गया कि पहले वो अपने बेटे के साथ कुछ अर्सा लुधियाना गुजारेगा और फिर उसके बाद किसी वक्त हरिद्वार की राह लेगा। पेटियों को दुकान के एक भी सेन में रखवा कर माघी राम ने सबसे पहले 2-2 लड्डू बांट कर हमारा मुंह मीठा करवाया और फिर करम बख्श के साथ मिलकर बाप बेटा पेटियां खोलने में मसरूफ हो गया। तीनों पेटियां सेकंड हैंड किताबों, स्कूलों के पुराने रजिस्टरों और इस्तेमाल शुदा बेई खातों से अटाअट भरी हुई थी। चंद लम्हे सुकूत रहा, जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। फिर माघी बनिया और उसका बाप जमीन पर बैठ कर और दो अथड़ मार मार कर अपना सर पीटने लगे। जिस किस्म का दर्दनाक बैन वो कर रहे थे उससे देखकर यही महसूस होता था कि वो दोनों बुरी तरह लुट पुट गए हैं। कुछ देर में जब ये आहजारी कदरे फ्रो ही तो करम बख्श ने इनको समझाना शुरू किया कि चोर हाथ से निकल जाए तो दानिशमंद उसके लंगोटी पर ही सबर शुक्र कर लिया करते हैं। यूँ भी इस ये कोई इतना घाटे का सौदा नहीं जरा 5 रुपये की लॉटरी में इतनी रद्दी आ गई है कि कई साल तक मिठाइयाँ बांधने के काम आती रहेगी। बाप तो घुटनों में सर दिए होले होले कराता रहा, लेकिन माघी राम पागलों की तरह बड़बड़ाता हुआ पेटियों सामान एक एक करके बाहर निकालता, इसे उल्ट पुलट कर गौर से देखता। जब गडरी में छपा हुआ कोई लाल नजर ना आया तो इसे खटाक से जमीन पर दे मारता। जब उसने बड़ी तकतीद की 2-3 मोटी मोटी जल्द किताबें गुस्से से जमीन पर पटकें तो करम बख्श चील की तरह झपटा और माघी राम का हाथ पकड़ लिया और जोर से चिखा, हाँ लल्ला रहे ना ऊत के ऊत, ये तो दीन इस्लाम की किताबें हैं। पाक कलाम की बेरुमती हुई तो गंडा सा लेकर तरबूज की तरह सर उतार दूंगा। हाँ, मैंने एक जिल्द खोल कर देखी तो रतन नाथ शरशार की फसाना आज़ाद थी। क्यों है ना दीन इस्लाम की किताब, करम बख्श ने पूछा। बड़ी मुकदस किताब है, मैंने भी हाँ में हाँ मिला दी। मैं तो पहले ही पहचान गया था, ये सारा बनिया इसको भी काठ कबार की तरह रद्दी में फेंक रहा था। करम बख्श फसाना आज़ाद की 4 जिल्दों को झाड़ पूंछ कर आंखों से लगाया और इन्हें एक तरफ बुलंदी पर रख दिया। अब करम बख्श ने हुक्म सादर किया कि मैं सारी किताबों को देखभाल कर दीन इस्लाम की किताबें अलग कर लूँ। दीन की किताबें अपने साथ ले जाएंगे, काफरों की दुकान में रद्दी के तौर पर इन्हें नहीं छोड़ सकते। मैंने बड़ी मेहनत से जायजा लेकर कोई 30 किताबों का इंतखाब किया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात, डिप्टी नज़ीर अहमद की मरातुल अरूस, ایامی اور روئے صادقہ عبدل علیم شرر کی فتح اندلس، فلورا فلورنڈا، ملک عزیز ورجنا، حسن انجلینا اور فردوس بری، محمد علی طیب کی رام پیاری، محمود میاں رونق، حاتم بن طے عرف افسر سخاوت، حافظ محمد عبداللہ کی علا دین خوش نصیب عرف چراغ عجیب، محشر انبالوی کی آل زور عین اور رتن ناتھ شرشار کے فسانہ آزاد کی چار جلدیں ملا کر کل 18 کتابیں یہ ہوئیں، باقی بارہ یا سو ناول تھے جو فضل بک ڈپو لاہور نے شائع کیے تھے۔ ان میں سے 5 ناولوں کا ترجمہ تیرتھ رام فیروز پوری انگریزی زبان سے کیا ہوا تھا۔ کرم بخش ان کتابوں کو اپنی چادر میں باندھنے لگا تو ماگی رام نے اسے جھڑک کر کہا، یہ کیا باندھ رہا ہے سالے، تھانے میں پرچہ نہ لکھوا دوں کہیں، میرا مال ہے، تیرے باپ کی جگیر تھوڑی ہے، ہمارے سچے دین کی کتابیں ہیں، تیرے پاس کیسے چھوڑ دیں۔ کرم بخش نے مدلل جواب دیا، ہم نے تیرے دین کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ ماگی رام بولا، ایک ہاتھ سے پیسے رکھ دو، دوسرے ہاتھ سے کتابیں لے جاؤ، یہاں تو نقد سودا ہے۔ کتابوں کی قیمتوں پر ماگی رام اور کرم بخش کے مومین بڑا زبردست ہندو مسلم فساد ہوا۔ دونوں کی گردنے کی رگیں چیخ چیخ کر پھول گئیں اور منہ سے جھاگ کے بلبلے اڑنے لگے۔ تو گھنٹہ بھر کی بک بک چھک چھک کے بعد 6.5 روپے پر معاملہ طے ہوا۔ 1.5 روپے کو تو کرم بخش نے اسی وقت ادا کر دیا، باقی 5 روپے کل تک ادھار کر کے ہم 30 کتابیں اٹھا لیں گے، کل صبح رقم پہنچ جائے گی۔ ماگی بنیا نے کرم بخش کو خبردار کیا، ورنہ بیاج لگ جائے گا۔ کتابیں لے کر ہم سیدھے اپنی بیٹھک میں آئے۔ یہ گھر سے کافی دور مسجد کے بالکل ساتھ 2 پکے کمرے جنہیں عام طور پر مردانہ مہمان خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ کرم بخش نے ایک الماری صاف کی اور میں نے بڑے احترام سے کتابوں کو اس میں سجا تو دیا، لیکن ساتھ ہی یہ فکر بھی دامنگیر ہو رہی کہ کل صبح تک ماگی رام کو ادا کرنے کے لیے 5 روپے کہاں سے آئیں گے۔ تو 5 روپے کا روتا ہے، کرم بخش نے مجھے تسلی دی، دین پیارے کے لیے کرم بخش گردن بھی کٹ جائے تو پرواہ نہیں، چاچا گردن تو مفت کٹ جاتی ہے لیکن ماگی رام تو نقد مانتا ہے، آخر 5 روپے تم کہاں سے لاؤ گے؟ تو فکر نہ کر، کرم بخش نے بڑے وسوخ سے کہا، یہ تو دین اسلام کی بات ہے، رب سچے نے تو مجھے مجرا دیکھنے کے لیے بھی منہ مانگے پیسے دیے ہیں، لیکن چاچا کل صبح تک پیسے ملیں گے کیسے؟ مجھے یہ خطرہ ستا رہا تھا کہ اگر قرض ادا نہ ہوا تو ماگی بنیا کتابیں ہی واپس لے جائے گا۔ عجیبا عجیبا بچے، عجیبا وظیفہ، کرم بخش نے دونوں ہاتھوں سے چٹکیاں بجا کے مزے سے کہا، آج رات پرانی باولی میں 1.5 پیر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر عجیبا پڑھ دوں گا، سورج نکلنے بعد نکلے گا، پیسے پہلے پہنچ جائیں گے۔ اپنے وظیفے کی شان میں کرم بخش نے پنجابی کے کچھ بیت گا کر پڑھے، ان میں اللہ کی حمد اور رسول اللہ کی ثنا بھی تھی۔ رسول اللہ کا نام آتے ہی کرم بخش اپنے دونوں ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگاتا اور سسکیاں بھر بھر کر رونے لگتا تھا۔ کرم بخش کو عقیدت مندی کی آگ میں کھولتے ہوئے پانی کی طرح پیچھے تاپ کھاتے دیکھ کر میں بھی اپنی عیاری کا جال بچھا کر تاک میں بیٹھ گیا اور موقع پا کر بڑی صفائی سے اس کی سادہ لوہی کے نہلے پہ اپنی مکاری کا دہلا دے مارا۔ وہ پگھلے ہوئے موم کا توتا بنا بیٹھا تھا، میں نے اپنے فن ازداری کے 2-4 ہاتھ چلائے اور بڑی آسانی سے اسے اپنے سانچے میں ڈھال لیا۔ سانچہ یہ تھا کہ خالصہ اسکول کفر کا گہوارہ ہے، اسلام کے ارکان خمسہ کی بجائے سکھوں کے 5 ککوں، کنگا، کیس، کچھ، کڑا، کرپان سے واسطہ پڑتا ہے، شبد گانے پڑتے ہیں، اساوری کے کیرتن میں شامل ہونا ضروری ہے، چپ چی اور ارداس کا سیکھنا بھی لازمی ہے، گرو گرنتھ کے پاٹھ میں سرزمین پر رکھ کر نمسکار بھی کرنا پڑتا ہے، اور گیانیوں گرنتھیوں پاٹھوں اور سیواکاروں کے منہ سے دن رات مسلمانوں کے خلاف مغالات بھی سننا پڑتی ہیں۔ اپنا دین بچانے کے لیے ضروری ہے کہ میں ان خطرات میں مبتلا ہونے سے پہلے اپنا ایمان مضبوط کر لوں اور دوبارہ اسکول جانے سے پہلے کچھ دن لگا کر وہ بصیرت افروز کتابیں پڑھ لوں جو ہم اتنی محنت سے ماگی رام کے پنجے سے چھڑا کر لائے ہیں۔ کرم بخش تو پہلے ہی رس گلے کی طرح دین اسلام کے شیرے میں لتھڑا ہوا بیٹھا تھا، میری چرب زبانی کے جالے میں وہ مکڑی کی طرح فٹ ہو گیا۔ اس نے میرے دینی جذبات پر مجھے شاباش دی اور بڑی رقت سے مجھے اپنے مرشد کے کچھ عرفانہ بیت ترنم سے سنائے، جن کا مطلب کچھ اس طرح کا تھا کہ دین کے علم میں گوتہ کھاؤ تو مونگا پاؤ، دنیا کے علوم میں کھو جاؤ تو مردار ہڈیاں کماؤ، اور کتوں کی طرح بیٹھ کر ساری عمر چباؤ، ایک پنتھ تو کاج، عام کے عام، گٹلیوں کے دام، اسکول کو بھی سلام، ماسٹر منگل سنگھ سے بھی نجات، 30 ناولوں کی دنیا، آگے پیچھے آباد۔ اب میں صبح سویرے تیار ہو کر گھر سے اسکول جانے کو نکلتا، کرم بخش مجھے بیٹھک میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیتا، دوپہر کے وقت وہ کچھ روٹیوں پر تازہ مکھن اور شکر ڈال کے مجھے دے جاتا اور घंटी बजते ही मैं बस्ता बगल में दबाए मस्किन सुरत बनाए पाबंदी से घर पहुंच जाता। करम बख्श ने हेडमास्टर सुराज सिंह को जाकर बता दिया कि मंगल सिंह की पढ़ाई के खौफ से बच्चे का दिल दहल गया है, इसे ताप चढ़ता है, तंदुरुस्त होते ही स्कूल आना शुरू कर देगा। कोई 3 हफ्ते में इसी तरह करम किताबी बनकर अपनी बैठक में मौतकफ रहा। जितनी मेहनत मैंने उन्हें इंजाम में की सारी उम्र फिर कभी नहीं की। 20-22 दिन के बाद जब मैंने दोबारा स्कूल जाना शुरू किया तो हब्बस से दम करने वाली योगियों की तरह मेरी काया कल्प हो चुकी थी। मास्टर मंगल सिंह के खौफ से जुबान में लकनत की जगह आब हयात के पुर शिकवा फिक्रे फराटे भरने लगते थे। तन्हाई में मेरी हदीस नफ्स भी अब्दर अलीम शर्र और रतन नाथ शरशार अबारत में होने लगी। क्लासरूम में ताबर तोड़ 3-4 जवाब मजमून लिख कर मैंने अपना सिक्का कुछ ऐसा उठा लिया कि कभी मास्टर मंगल सिंह उर्दू का सबक मेरे सुपुर्द करके खुद गायब हो जाते। 4-5 हिंदू लड़के तो आराम से पढ़ लेते थे, लेकिन सिख तलबालिम को अलग बैठ कर बड़ा उदम मचाते थे। सबक के दौरान वो जो बोले सो नहाल श्री अकाल के नारे लगाते रहते थे और अखीर में खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से डेस्क बजाते थे और मेरी तरह मुक्के तान तान कर अपना मखसूस कौमी तराना गाते थे। राज करूँगा खालसा बाकी रहेगा ना को। कुछ अरसे बाद सिंह सभा का त्यौहार आया। यह सिखों का सालाना मेला था जो चमकौर साहब में लगा करता था के मौके पर सिखों का एक दीवान भी मुनक्कद होता था जिसमें सिख पंथ की शान और गुरु साहबान की अजमत पर बड़ी धूमधाम तकरीरें होती थी। इस साल खालसा स्कूल की तरफ से दीवान में गुरु नानक पर मजमून पढ़ने के लिए मेरा इंतखाब हुआ। मैंने अब्दुल अलीम शरर के नावलों से शुजाहत व सखावत व जकावत के किस्से निकाले, रतन नाथ शरशार से मियाँ आज़ाद का दम खम उठाया, अल्फाज बयान करने की कोशिश की शौकत मोहम्मद हुसैन आज़ाद से लिया और कई किताबों के सफ़े नकल करके इन के मुनासब व तरमीम व तरहीफ के बाद एक 7 रंगी खालकत फाखरा तैयार करके गुरु महाराज श्री नानक देव को पहना दी। मजमून के आखिर में गुरु नानक की मदह में 20 अशार का एक मंजूम कसीदा भी था। इस कसीदे की तैयारी में महशर अनबालवी की तसनीफ आलजोरैन से बड़ी मदद मिली। ये किताब दरअसल आर्ट बरादरी की तारीख थी जिसमें फाजल मुसन्नफ ने इस कौम को अरब के एक नजीफुल तरफैन कबीले जोरैन की आल आर साबित किया था। अजीबोगरीब तहरीकी हकायक शुआद के अलावा इस किताब में अराइयों की अजमत व फजीलत पर बहुत सी नज़में भी थीं। बहर तवील मैंने एक नज़म मुझे पसंद आई, मैंने उसमें बुलबुलन बेनज़ीर सुल आलान हम सफ़ीर जैसी तरकीबें हजफ कर दीं और उनकी जगह गुरु नानक देव के जुमले अलका व सफ़ात को ठोंस कर एक शानदार कसीदा तैयार कर लिया। सिंह सिबा के दीवान में 2500 का मजमा था। महाराजा पटियाला कुर्सी सदारत पर मतकमन थे। पंडाल में एक तरफ नहंग काली बैठे थे, दूसरी तरफ नर नकारियों का इज्तिमा था। एक कोने में कलाल गढ़ी के कुछ मुन्ने सिख थे, दरमियान में अवामुन नास जमीन पर बैठे थे। स्टेज के ऊपर दाएं तरफ इलाके के अफसरों और रईसों की कुर्सियां थीं। बाएं जानब हमारे स्कूल का स्टाफ था। पंडाल से बाहर एक कोने में 30-40 मुसलमान मर्द जान भी अछूतों की तरह लगातार खड़े थे। ये चमकौर की अराई बरादरी थी जो करम बख्श की तरगीब पर सिखों की भरी महफल में मेरी तकरीर का मुहैरा और अकल कारनामा देखने के शौक में चले आए थे। स्टेज पर आकर मुझे अपनी ज़िंदगी की पहली तकरीर करने में कोई ख़ास दुश्वारी पेश ना आई। मेरा काम तो फ़कत ज़बान हलाना था, वरना फिक्रे पर फिक्रा तो शरर और शरार और आज़ाद के कलम से निकल कर खुद बखुद परवाज करता था। पंडाल में बिल्कुल सुकूत था। जब मैंने तरन्नम से बहरुल तवील का कसीदा लापना शुरू किया तो यह सन्नाटा और भी गहरा हो गया। मेरी तकरीर दिल पजीर ख़त्म हुई तो पंडाल में कई जानब से शाबाश शाबाश की आवाज़ें आईं। महाराजा पटियाला जो कुर्सी सदारत में नीम ख्वाब दीदा बैठे थे अचानक चौंक उठे। उन्होंने मुझे थपकी दी, अपनी जेब से मलका विक्टोरिया की मूरत वाला चांदी का 1 रुपया निकाला, इसे अपनी उंगली पर अवेजा करके अंगूठे से उछाल कर टन से बजाया और मुझे इनाम में दे दिया। दीवान ख़त्म होते ही मेरी जमात के सिख लड़के मुझे कशां स्कूल के पछवाड़े में लेकर कुछ देर उन्होंने राज करूँगा खालसा बाकी रहना को लाभ लाभ कर मेरे इर्द गिर्द भंगड़ा डाला और फिर महाराजा पटियाला के इनाम का रुपया ज़बरदस्ती छीन कर ले गए। मेरे मजमून और कसीदे की कामयाबी ने गोया मेरे सीने में बंधी हुई बहुत सी घुंडियाँ खोल दीं। आले जोरैन की नज़मों के काफ़ी और रदीफ जमा करके अब मैंने कुछ अपनी तकबंदी भी शुरू कर दी। पहले रौनक जमवी तखल्लस रखा, फिर किसी ज़रूरत शायरी से मजबूर होकर जाफर चकोरी से बदल डाला। میرا ایک شعر خاص طور پر ہمارے اسکول میں زباد زرد خاص و عام ہو گیا اور سکھ طلبہ بھی اسے شوق سے اپنے جواب مضمونوں میں استعمال کرنے لگے۔ شعر عرض کیا تھا، یہ ایسا عجب شہر چمکور ہے، کسانی نہیں جس کا لاہور ہے۔